नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाला चारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में घंटाघर के सौंदर्यीकरण, भव्य रूपांतरण और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का लोकार्पण किया। हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ 2027 के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 54 करोड़ रुपए का बजट पारित। और मुख्यमंत्री ने जनजाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। कहा, ये परियोजनाएं जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधा को सशक्त बनाएंगी। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाला चारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पशु पोषण सुनिश्चित होगा, दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देहरादून में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा की संयुक्त अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में साइलेज योजना के विस्तार पर सहमति बनी। साइलेज योजना पहले से ही राज्य के 10 पर्वतीय जिलों में संचालित है। अब इसे और व्यापक रूप देने का फैसला किया गया है ताकि अधिक पशुपालक लाभान्वित हो सकें। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि विभागों के तालमेल से किसानों और पशुपालकों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सहकारिता की भागीदारी से लागत में कमी आएगी और दुग्ध क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। बैठक में ये भी तय हुआ कि विभागीय समन्वय को संस्थागत रूप दिया जाएगा ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो और पशुपालकों को स्थायी लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर के सौंदर्यीकरण, भव्य रूपांतरण और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बनाए गए 4 आधुनिक हिलांस कम किचन आउटलेट्स का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नए स्वरूप में तैयार घंटाघर अब न केवल शहर की शोभा बढ़ाएगा बल्कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून में 4 स्थानों कलेक्ट्रेट, कोरोनेशन अस्पताल, गुच्चूपानी और ISBT पर हिलांस कैंटीनों की शुरुआत भी की गई है जो आम लोगों को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराएंगी और स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं और 11 स्थानों पर निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के डालनवाला थाने में स्थापित 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदा प्रभावित संभावित राज्य है और ऐसे में समय रहते चेतावनी देना बेहद जरूरी है। ये सायरन आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 8 और 16 किलोमीटर की रेंज वाले ये सायरन प्राकृतिक आपदाओं के समय अलर्ट देंगे और नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी होंगे। समय पर चेतावनी मिलने से जान माल की हानि कम होगी और राहत व बचाव कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रणाली का नियमित परीक्षण किया जाए और जनता को इसके बारे में जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने डालनवाला थाने में बाल थाने का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों, उत्तराखंड PCS एसोसिएशन और पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में सहायता राशि प्रदान की। चंपावत जिले के छमनिया लोहाघाट में 256 करोड़ की लागत से बन रहे महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का खेल एवं युवा कल्याण सचिव अमित सिन्हा ने निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को समय पर और गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के निर्देश दिए। सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि ये प्रदेश का तीसरा बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज होगा जो स्थानीय लोगों के साथ ही पूरे उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले अंतर्राज्यीय खेल आयोजनों को देखते हुए लक्ष्य है कि यहां से पदक विजेता तैयार किए जाएं। पहले चरण में ग्राउंड, हॉस्टल और प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा ताकि जल्द कोचिंग शुरू हो सके। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर काम करने के निर्देश दिए और कहा कि 1 से 1.5 साल में कॉलेज तैयार हो जाए।
ये हमारा तीसरा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, अपने आप में बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है ये। तो हमारी पूरी तैयारी ये रहेगी कि यहाँ हम प्रथम चरण में जो कार्य कर रहे हैं, इसमें हमारे ग्राउंड तैयार हो जाए, लड़कियों का हॉस्टल तैयार हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तैयार हो जाए, जिससे कि उनकी कोचिंग प्रॉपर यहाँ शुरू हो सके। काम चल रहा है, इसका जो भी ट्रैक का काम है वो चल रहा है, वो भी इसका हिस्सा बन जाएगा, तो उसको भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएंगे।
देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पहले चरण में 51 बच्चों को रेस्क्यू कर स्कूलों में दाखिला दिलाया गया और दूसरे चरण में 31 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया। इस उद्देश्य से साधुराम इंटर कॉलेज में इंटेंसिव केयर सेंटर भी बनाया जा रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
कुंभ 2027 के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बनी इस कार्ययोजना में तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 54 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाए रखने के लिए 2924 बेड की व्यवस्था होगी। इनमें 35 अस्थायी अस्पतालों में 373 बेड, 13 सरकारी अस्पतालों में 1100 बेड और प्राइवेट अस्पतालों में 1450 बेड आरक्षित किए जाएंगे। 40 एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगे, जिनमें 24 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। श्रद्धालुओं के खान पान की सुरक्षा के लिए 3 नई फूड सेफ्टी वैन भी उपलब्ध होंगी। हरिद्वार के रोशनाबाद में 120 लाख लागत की ड्रग वायर हाउस बनाया जाएगा और 4 नए वाहन खरीदे जाएंगे। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए फॉगिंग मशीनें खरीदी जाएंगी। वहीं भूपतवाला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन की सुविधा बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2027 का अर्धकुंभ दिव्य और भव्य स्वरूप में आयोजित होगा। सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी श्रद्धालु स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में जनजातीय कल्याण विभाग की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाएंगी और नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 128 जनजातीय गांवों का चयन जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में किया गया है। कालसी, मेहरावाना, बाजपुर और खटीमा में 4 एकलव्य विद्यालय संचालित हैं। पिथौरागढ़ में भी एक नया एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और 3 आईटीआई संस्थान संचालित हैं। जनजातीय बच्चों को छात्रवृत्ति, निशुल्क कोचिंग और तकनीकी शिक्षा की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों के संरक्षण के लिए उन्हें समान नागरिक संहिता से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने जनजातीय शोध संस्थान में सौंदर्यीकरण, बालिकाओं के लिए हाईटेक शौचालय और आदि लक्ष्य संस्थान में डाइनिंग हॉल निर्माण की घोषणा भी की। उत्तरकाशी में यमुना घाटी नौगांव बाजार में कल शाम अतिवृष्टि से मलबा आने पर कई दुकानें और आवासीय भवनों को नुकसान हुआ। एक आवासीय भवन मलबे में दब गया और 6 से अधिक भवनों में पानी भर गया। हालांकि इससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाला चारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में घंटाघर के सौंदर्यीकरण, भव्य रूपांतरण और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का लोकार्पण किया। हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ 2027 के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 54 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित और मुख्यमंत्री ने जनजातीय कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। कहा ये परियोजनाएं जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।